یا علی مدد. الوائز رائے ابولی مشنری وائز نمبر
812 22nd of December year 2005 my wise in Evershine Jamaat Khana of Karachi. انسان کی لائف میں جتنے بھی علوم ہیں ان علوم کا ذکر تھوڑا بہت ہمارے گنانوں میں آئے. میں ابھی ایک گنان کا پاٹھ بولتا ہوں, آپ اس کے اگر مطلب کرو اور پھر اس کے اندر اس کا تجزیہ کرو تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کیسے کیسے علم ہمارے دھیان میں کون گنان ہے اور یہ گجپات کا اوبر گنان ہے. سلوات پڑھ دینا جیم چکت سو پریتا کرے وا آئی پریتا کرے بہت سے کنانوں میں جکتی کا لفظ ہے لیکن یہ سنسکرت ورڈ ہے یوکتی. یہ کہتے ہیں کہ جیسے کیسے تم یوکتی سے دوستی کرو گے جیم جیم سکت سو پریت کرے گا, یہاں پریت کا مطلب ہے دوستی کرو گے, کیسے کیسے رات جو ہے وہ آستے آستے ختم ہو جائے گی. پھر تیزے کئی نہ بھولیا محمد کا نور ہے پیر محمد کا نور ہے इमाम अली का नूर है। ये दोनों नूर खुदावंद का नूर है। किस अच्छे तरीके से पीर मां बाप ने हमें एक बहुत बड़ी इल्म की बात कही। युक्ति कहते हैं टैक्टफुलनेस, इंग्लिश में है टैक्टफुलनेस, यानी बहुत अच्छे तरीके से किसी काम को करना, टैक्टफुली करना कि जिसमें कोई खराबी पैदा ना हो, इस तरह करना, इसमें बहुत बड़ी चीज है डिसिप्लिन। जैसे जैसे तुम टैक्टफुलनेस को अख्तियार करोगे, अपनी जिंदगी के अंदर टैक्टफुल रहोगे, तैसे तैसे रात, यहां रात का मतलब है अंधेरा, और अंधेरा है इग्नोरेंस, जहालत जो है इग्नोरेंस है, वो अंधेरा है। बाज आदमियों को डीप थिंकिंग नहीं होती तो कोई दोस्त अच्छा बड़ा उसको कहता है तू तो अंधेरे में सोया है, तो जब अकल खुलती है तो रोशनी पैदा होती है, अंधेरा दूर हो जाता है। फिर कहते हैं कि जैसे जैसे तुम होशियारी से अकल से काम लोगे, तैसे तैसे तुम्हारी जो इग्नोरेंस है, तुम्हारे अंदर जो अंधेरा है वो दूर हो जाएगा। तो क्या होगा, गलतियां कम होंगी, गलतियां कम होंगी, नुकसान कम होगा, बेइज्जती कम होगी। जब इंसान के अंदर उछाचापन आ जाता है, कहां क्या करना कहां क्या नहीं करना, ये जानना बहुत जरूरी है। इसी को युक्ति कहते हैं, इसी को युक्ति कहते हैं। मैंने आज ये टॉपिक इसलिए निकाला क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि मैं किस पे रिवाइज करूंगा। वो दरवाजे से अंदर आया हूं तो मुझे ऐसा हुआ कि इस जमात में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बड़े शार्प हैं, बहुत समझदार हैं। मैं यहां कुछ ऐसे लोगों को महसूस करता हूं कि जिनमें किनान के समझने के लिए तलब है। जमात के अंदर हर किस्म के लोग होते हैं और जमात जो है वो मौलाना हजरत इमाम की रूहानी बच्चे हैं। जमात है वो हजरत इमाम का बदन है। मैं अपनी दो तीन बातों में ये जिक्र कर चुका हूं। अगर कोई शय पीर न दे सके, हालांकि पीर मोहम्मद का नूर है, उसमें सब ताकत है, मानो कि हम पीर से कोई चीज मांगे और वो न दे सके या न देना चाहे, और जमात के अंदर आके कभी सारी जमात या तो समान होके जो मांगे, तो जो चीज पीर नहीं दे सके जमात दे। आप लोग तो रोज इनाम बढ़ते हो। ये कहते हैं कि एक तिल हम तिल खाते हैं ना, तिल का एक तिल जितने नेकी हो गए और हाथी जितना बड़ा गुना हो गए, अभी क्या कंपैरिजन है? कहां एक तिल, कहां हाथी? फिर कहते हैं जमात में ये ताकत है कि मौला को कहे ये तिल की नेकी कबूल करके ये हाथी का गुना उड़ा दे तो वो हो जाएगा। मौलाना अली शमा बाब, मौलाना शाह हसन अली के साथ ईरान से आए, हसन अली शाह इमाम थे, अली शमा बाब ये थे। मैंने ये भी वाज़ों में कहा है कि इमाम अगर अकेला हुए, यानी पीर दूर चला गया है कहीं मुसाफरी पे, तो इमाम जमात में नहीं आएंगे। इमाम के साथ पीर होना चाहिए। पीर अकेले आते हैं लेकिन इमाम पीर के बगैर जमात में और आज सुल्तान मोहम्मद शाह के जमाने से लेके अभी तक दोनों जो में एक जगह इकट्ठे हो गए उसमें भी ये एक राज है कि इमाम जब चाहे आ सकता है क्योंकि तीन जमा भी उसके साथ है। बहुत टाइम हो गया हसन अली शाह मां बाप ने दीदार नहीं दिया और फिर मां बाप एक वीक में दो दफा एक दफा आया करते थे मुखी के, मुखी साहब के पास कुर्सी पड़ी रहती थी हमेशा। अली शाह मां बाप बगैर कहे जमात में चले आते थे और कुर्सी पर बैठ के दुआ देते थे, वाज करते थे, फरमान करते थे। अगर जमात दुआ पढ़ रही है तो पीर मां बाप जमीन पे बैठेंगे, दुआ खत्म हो जाएगी फिर कुर्सी पे बैठेंगे। मुखी एक दिन खड़ा हुआ हाथ जोड़ के, पीर मां बाप एक अरस है, मुखी क्या है? सरकार मौलाना हाजर इमाम हसन अली शाह बहुत टाइम हुआ दीदार नहीं दिया, जमात खाने नहीं आए, तो आप अर्ज करो। आप अच्छे मैं अर्ज कर लिया। एक महीना निकल गया तो बाबा मुखी ने अर्ज किया, कहा मुखी मैंने अर्ज की थी, अच्छा मैं अभी वापस करूंगा। एक महीना और निकल गया, तीन महीने निकल गए। मुखी अब मैं इमाम को नहीं कहूंगा, क्यों सरकार? मेरा और इमाम का ताल्लुक ऐसा है वो मेरा मालिक है। तीन दफा अर्ज की है, चौथी दफा अर्ज करूंगा, अगर नाराज हो गया तो मेरी 50,000 बरस की बंदगी बर्बाद हो जाएगी। पचास हजार बरस की बंदगी। देखो दीनदारो, पीर और इमाम का जो नूर है वो और चीज है। हजर इमाम इमाम नहीं बने थे तो उनके बदन में एक रूह तो थी, इसके अलावा जीव भी था। जीव को हयातुल दुनिया कहते हैं, जिंदगी कहते हैं, और जो जीव है अकाउंटेबिलिटी जीव की है। हम अच्छा बुरा करते हैं उसकी सजा, उसकी सजा जीव को मिलती है, और वो पाक है, रू नूर है। तो ये हालत समझ से ऐसा कोई आदमी दुनिया के अंदर कि जिसकी बंदगी 50,000 बरस इकट्ठी हो जाए तो उसको अल्लाह ताला वो दर्जा देता है कि जो नबी का दर्जा है, यानी वो पीर बनता है। मगर एक इंसान बहुत जिएगा, 100 बरस जिएगा, कभी हुंजा में है तो शायद 125 बरस जिएगा, तो 50,000 बरस की बंदगी कैसे? मोमिनो, खुदा ताला के कारखाने में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि लोग नहीं समझते, आलिम जानते हैं, आम लोग इस चीज को नहीं समझते। देखो मैं आपको बोलूं, आप लोग माशाल्लाह सब 5 साल 12 साल के मेंबर हो, उसका मतलब क्या है कि मौला ने आपकी 12 बरस की खिदमत कबूल की है, तो कोई और जगह 50 बरस की बंदगी कबूल की है लाइफ में। खुदा ताला जो है वो इस कदर रहीम और करीम है कि बस दफा हम एक दिन इबादत करें और वो कह दे कि मैं 1,000 वर्ष की बंदगी कबूल करता हूं, तो वो मालिक है, मालिक है। और एक और बात भी मैं आपको बोल रहा हूं कि हमारे मां बाप गुजर गए, बाप दादा चले गए, हो सकता है दादा में या ऊपर 2-4 और पीढ़ियों में कोई ऐसा अजीम इंसान था कि जिसकी इबादत खुदा के दरबार में कबूल हुई और उसने अपनी औलाद के अंदर अपनी बंदगी को बांटा, तो कईयों को बहुत बड़ी बड़ी बंदगी के टुकड़े मिले। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाहदार 1937 में अफ्रीका आए, उस वक्त युगांडा के अंदर एक ग्रेट मैन था इस्माइलियों में, और उसकी 200 ब्रांचेस थी, वजीर का टाइटल था, वारिस अली जीना इस्लाम, मेहमानी रखी, सब फरमाया अली जीना मैं तेरी तरक्की देख के बहुत खुश हुआ, अगर तो 50 फैमिलियां इकट्ठी अवार्ड से मांगा और यहां युगांडा में उनको सेटल करा दे तो मैं तेरी सारी संजीदगी की 10 बार कबूल करूंगा। वो जमाने में वो करोड़पति आदमी था, जिंदगी भर की 10 बार कबूल होती है। 50 फैमिलियां अफ्रीका से मंगा रहे 1925-26 की बात है, एडिंग करो किस्मत न हो तो कुछ नहीं, यही युक्ति की बात आती है, वो ये चीज न कर सका। और दुनियावी तौर पर हजर इमाम को रंज हुआ। तो अली शमाव कहते हैं, मुखी मैं अब मौला को नहीं कहूंगा, मुखिया को बोला की मुझे दिल की मत हो, मैं तुझा रास्ता बनता हूँ, जमात में रोस्टर भी निकालो, मौला के दीदार के लिए तस्वीर शुरू की। तीसरे के चौथे दिन मौला दीदार देने आए, मैंने भी कहा कि जमात में बहुत ताकत है और जमात अगर मिल के सच्चे दिल से कुछ मांगे तो मौला को देना पड़ता है, क्योंकि उसका ये प्रोग्रेस है। 2000 आदमी तस्वीर निकाल रहे हैं लेकिन आधे बाहर घूम रहे हैं, बोलते हैं या मोहम्मद, मगर यहाँ हाजिर नहीं है, जबान चलती है, ख्याल बाहर घूमते हैं, वो चीज में मजा नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। और जो तौहीद का उसूल है, एक होना सब 2000 आदमी अगर ये ख्याल हो जाए तो जो चाहो मांगो मिले। ए मोमिनो, फिर कहते हैं गत माहे जब या वो तब है जिंदा बुलाओ, गत माहे जब या तब है जिंदा बुलाओ, कले अमरपुरी पाओ शाकिर सुल्तान मुर्शिद ने फरमाया हमारा दीदार चाहिए जमात खाने आओ। आंखों से हमको शायद दीदार न हो लेकिन हमें दीदार का फायदा मिलता है। दीदार का फायदा क्या है? ईमान मजबूत होता है। ईमान की हजरत ईमान की मोहब्बत पैदा होती है, दिल साफ होता है, बुरे ख्यालात घटते जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि जो अहले बैत हैं ये आयत इरा कुरान शरीफ में आयत इरा जो है उसका कहता है कि अहले बैत जो है वो पाक है। अब ये पाकीज़गी का क्या है, मकसद क्या है, किस तरह पाक है? ए मोमिनो, जो अहले बैत हैं उनको कोई बुरा ख्याल नहीं आता, बद ख्याल नहीं आता, इसलिए वो पाक है। यही चीज अगर आदमी समझ के रोज जमात में आवे तो मौलाना सुल्तान महमूद शाह फरमाते हैं कि तुम जमात खाने आओ तुम्हें हमारा दीदार मिलेगा। तो डेली दीदार करने से हमारे दिल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बुरे ख्यालात निकलते जाएंगे। देखो मैं आपको ये बात कुरान की बताऊं, ये बात कुरान में है। अल्लाह कहता है नमाज बेहयाई के कामों से बचाती है और नमाज यानी हमारी दुआ, जब हम जमात खाने में आके जमात के साथ दुआ पढ़ते हैं तो हमारे ख्यालात में से बुराइयां आस्ते आस्ते निकल जाती है और इंसान बेहतर से बेहतर होता जाता है। अब मैं कोई वही चीज कहता हूं, जेम जेम युगत सोप्रीत करेवा तेम तेम रैन बिहारी। जैसे जैसे साबुन मलते रहोगे तैसे तैसे कपड़े की मैल कटती जाएगी, कटती जाएगी। जैसे जैसे जमात खाने की हाजिरी और ख्याल अमल के अंदर ईमान की मोहब्बत, तैसे तैसे इंसान रोज पर रोज साफ होता जाएगा। फिर क्या होगा, गुना घट जाएगा, गुना की सजा घट जाएगी। गुना की सजा घटने से आदमी के दुख घट जाएंगे, उसके दिल में सुकून राहत एक किस्म की इत्मीनानुल कल्ब पैदा होगा। अल्लाह बे जिक्र अल्लाह हो तत्माइनुल कुलूब। देखो खुदा की याद में तुम्हारे दिलों को राहत मिले, इत्मीनान कल्ब मिले, उसको कोई डर नहीं। वला खौफ वला हुम याज़ वला हुम याज़ न उसको खौफ न उसके दिल में गम है। दुनिया हमें सताती है इसलिए कि ईमान में हम कमजोर हो गए, और ऐ मोमिनों हम आज ही इस दुनिया में जो रहते हैं वल्ला बिल्ला गए 50,000 बरस की हिस्ट्री में ऐसा बुरा वक्त कभी नहीं आया। इस वक्त जो गुनाह और बदियों की ये दुनिया मौजूद है, ऐसी बुरी दुनिया कभी नहीं थी। और न मत समझो कि ये चीजें कल परसों बंद हो जाएगी, ये 100 बरस तक चलेगा। जमीन का यही हाल, दुनिया का यही हाल 100 बरस तक चलेगा। रोज तो रोज बदियां बढ़ती जाएंगी, आफतें बढ़ती जाएंगी, गुनाह बढ़ते जाएंगे, बलाएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए कि खुदा ताला का ये कानून है, आग जल रही है तेल डालते रहो भड़कती रहे, तेल डालना बंद करोगे तो वो भड़कना बंद करेगी। गुनाह की लकड़ियां गुनाह का तेल आज की दुनिया को जला रहा है, हमारे चारों तरफ आग जल रही है। ईमान की छतरी हमारे ऊपर है, उसकी रहमत की, इसलिए हम लोग दुनिया की आफतों में से, बहुत सी आफतों में से बचे हुए हैं। फिर भी सेक तो लगता है, आग में हाथ नहीं डाला लेकिन आग के नजदीक जाने से उसकी गर्मी तो लगती है। गुनाह कम होने चाहिए। दुनिया में मजहब खुदा ने इसलिए ताकि इंसान बदियों से गुनाहों से बचे और दूसरी तरफ उसकी मजबूत बने और तरक्की करता जाए। गुनाह कम होने चाहिए। जब तक के गुनाह कम नहीं होते इंसान के अंदर खूबसूरती पैदा नहीं होती। एक सरोवर सींचे रो प्यारिया तुझा शुका नुगरे महीरे पाई भाई। तालाब को, झील को, तालाब को सरोवर कहते हैं। एक ही झील से सब गार्डन में बाग के अंदर पानी मिलता है, लेकिन कोई पौधा सूख जाता है, पानी कम मिला तो वो क्यों सूख गया? उसकी जड़ों के अंदर रूट्स में कुछ खराबी थी, तो उसकी वजह से ऊपर पानी नरिशमेंट नहीं मिला। जड़ें क्या है? ईमान। मौलाना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक पौधा है, उसकी जो जड़ें हैं वो ईमान है, और पौधे के जो स्टेम है, ब्रांचेस हैं, शाखें वगैरह हैं, ये शरीयत है। फरमाया इस पौधे को छोटी छोटी कलियां लगती हैं, इंग्लिश में हम बड्स कहते हैं, यह तरीका है। फरमाया फिर उसका फूल खिलता है, ये हकीकत है। फरमाया उसके अंदर जो खुशबू है ना, वो मालिक है। कितने सॉरी कितने अच्छे तरीके से इमाम ने एक मुश्किल चीज को हल कर दिया। जड़े ईमान है, अगर ईमान ही नहीं तो शरीयत नहीं, तरीकत नहीं, हकीकत नहीं, मन कुछ जड़ ईमान। कराची की जमात में बहुत से लोगों का ईमान हिल गया है, गैरों की दोस्ती में, गैरों की बातों में कईयों का ईमान हिल गया है। मेरे पास बहुत से इस किस्म के लोग आए और मुझे ताज्जुब है इस बात के लिए कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने मजहब को जाना नहीं। ऐ दीनदारों, मुझे कोई बाक नहीं, डर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको खुलम खुला कह देता हूं, हम शिया हैं या सुन्नी भाइयों का जोर बहुत है, उनका रास्ता जुदा है, खुदा उन पे राजी रह गए, हमारा रास्ता अपना रास्ता है। मैं दो चार वाजों के अंदर इस बात का जिक्र कर चुका हूं, अमूमन हमारे ऊपर जो अटैक होते हैं तो वो यही हो जाए कि तुम नमाज नहीं पढ़ते, रोजे नहीं रखते, इसमें हमारी भूल भी है। जब कोई कहता है तुम नमाज नहीं पढ़ते तो तुम चुप हो जाते हो, नीचे देखते हो शर्म के मारे, अरे मुंह खोल के बोलो कि हम तुमसे ज्यादा नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो फारसी जबान का लफ्ज है, अरबी लफ्ज नहीं है, और ऐसी कोई तख्सीस नहीं कि इसी तरह से उठो और बैठो और फिर नमाज पढ़ो। अल्लाह कहता है बैठे बैठे रिक्लाइनिंग हालत में लेटे लेटे किसी भी तरीके से अल्लाह को याद करो। मकसद तो याद है, और हम जो दुआ पढ़ते हैं वल्ला बिल्ला वो नमाज है। उनकी नमाज में जो मेन चीजें हैं तो सूरतुल फातिहा है, और एक और सूरत होती है, वही चीजें हमारे दुआ के अंदर है। और मैंने ये भी कहा है कि वो 17 रकातें पढ़ते हैं 5 नमाजों में, हम 18 रकातें पढ़ते हैं 3 नमाजों में। कभी ऐसा कबूल मत करो कि हम नमाज नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जमात खाने बड़े होते हैं, उनकी मस्जिदों में ऐसी हाजिरी नहीं होती है। हमारे जमात खानों में सुबह 3 बजे बत्तियां जलती हैं, लोग आते हैं 4 बजे जिक्र करते हैं घंटे तक, मस्जिदों में यह नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ मजलिसें और इस किस्म की बातें होती हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम अल्लाह रसूल को याद करते हैं। हम ज्यादा मजहब परस्त हैं और खुदा के फजल करम से हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जो उनमें नहीं है। एक और बात हमेशा याद रखो, कितने मुसलमान हैं कि जो ज़कात दे रहे हैं? नहीं। ज़कात ये पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है, ज़कात दीन की इशायत के लिए है। और हम जिस तरह दसवन देते हैं उश्र और ज़कात देते हैं, उश्र अल्लाह इमाम का हक है। हमारे मजहब के अंदर, हमारी समाज के अंदर अगर कोई जमात खाना बनाना है तो खुदा की कसम थोड़े ही अरसे के अंदर उसके पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने देखा है 3-3 बरस तक मस्जिद खड़ी नहीं हुई, क्योंकि पैसे नहीं है। ऊपर वाले बहुत सी चीजें खा जाते हैं। मैं 40 बरस दार सलाम में रहा, मेरा मौला जब भी दार सलाम आवे तो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाए। पहली दफा मौलाना आजर इमाम इमाम नहीं बने थे, उसके पहले की बात है, 54 में, 54 में मौलाना सुल्तान अहमद शाह ने इनको तालिका भेजा था कि मैं अपने दोनों शहजादों को भेजता हूं। तो उस वक्त सरकार ने फरमाया कि जुमा आया, मैं जाऊंगा नमाज पढ़ने। तो प्रिंस अमीन और आजर इमाम दोनों जुमे की नमाज पढ़ने आए। बहुत से लोग हमारी जमात के बड़े बड़े लोग भी गए थे। मस्जिद की हालत अच्छी नहीं थी, आदमी उससे जो बड़े लोग थे इनके उनसे बातें की तो वो कहने लगे, हाँ हम कोशिश कर रहे हैं नई मस्जिद बनाने के लिए। सरकार चले गए और 57 में 3 बरस के बाद मौला इमाम बने। इमाम बने आए, उस वक्त बैठ का काम था इसलिए मस्जिद में नहीं गए। लेकिन दोबारा जब आए 58 में तो मौला मस्जिद में गए तो मस्जिद पर छत नहीं थी, कुछ नहीं था, क्योंकि वो मस्जिद बनाना चाहते थे और नीचे से ऊपर आ रही थी। उन्होंने हजर इमाम के पास बात निकाली तो मौलाना शाह करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जो लीडर से उनको कहा कि मैं इनके लिए 3 लाख शिलिंग देता हूं, इनको ये रकम दे देना। उनको हमारी जमात ने 3 लाख शिलिंग दे दिए। 3 लाख शिलिंग सुल्तान ऑफ ज़ंज़ीबार ने भी दिए, 6 लाख शिलिंग उस हिसाब से काफी थे। लेकिन हुआ यह है कि काम लंबा होता गया, कीमतें बढ़ती गई, यहां तक के 6 बरस हो गए मस्जिद पूरी नहीं हुई। मौला बापा फिर वापस आ गए। जब गए तो रोने लगे, मस्जिद पूरी नहीं हुई। मौला चुप रहे, देख जाके सब चले गए, लेकिन घर जाके अपनी जमात के जो लीडर्स थे उनको हुक्म किया, तुम मस्जिद बना दो, जितना भी खर्चा आ रहे हैं। तो मस्जिद कंप्लीट हुई, हजर इमाम की बख्शीश है। और एक मस्जिद मौला ने 20 लाख शिलिंग की यूनिवर्सिटी ऑफ दारुसलाम में बनाई। दुनिया के अंदर बहुत से जगहों के ऊपर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शहजादार ऐसी बख्शी और खैराते हैं, उसके साथ साथ हमारी जमात का हिस्सा भी है। न सिर्फ इस्लाम, ये जो नूर है अल्लाह का नूर है, तो अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं, हिंदुओं का भी है, सिखों का है, क्रिश्चियन का है। इसी तरह से जो इमाम है उसकी की नजर तमाम मजहबों के ऊपर इंसानियत की नजर से पहुंचती है। आखिर इंसान तो है मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह। के अंदर लड़ाई चालू थी, माता सलामत को लेके आए थे, एयरप्लेन की सर्विस खतरे में थी, लड़ाई का जमाना था और मलक को मुंबई से कराची जाना था। तो बॉम्बे से कराची वाया स्टीमर से आप जाने, कोई अच्छी लग्जूरियस बोट नहीं थी, एक कार्गो शिप थी। कार्गो शिप में तो सामान होता है, मुसाफिर नहीं होते। तो एक शिप इधर से निकल के अपनी जमात के लीडरों ने इंतजाम किया, तो शिप का जो कैप्टन था वो यूरोपियन था, उसने इंतजाम करके अपनी कैबिन खाली कर दी और हजरत इमाम को सुल्तान शाह को यह कैबिन दी। अब ये मुसाफरी हार्डली 20 घंटे की है, लेकिन 3-4 दिन निकल गए, क्योंकि जो शिप है उसको रास्ते में माल लेना पड़ता है। बॉम्बे से एक स्टीमर निकले, 3-4 स्टॉप करने के बाद एक जगह आई द्वारका। द्वारका एक पोर्ट है और हिंदुओं की बहुत बड़ी रिलीजियस प्लेस है। द्वारका में कृष्ण की बहुत बड़ी यानी कि हिस्ट्री है, बहुत बड़ा कृष्ण का मंदिर है। तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने कैप्टन को कहा कि पॉसिबल हो सकता है कि मैं ये मंदिर देखूं। उसने कहा ये सर आइए। उसने अपनी जो शिपिंग कंपनी थी उसको टेलीफोन किया और इंतजार हुआ। शिपिंग कंपनी के जो मैनेजर था वो खुद गाड़ी लेके आया, मौला को बेगम साहब को वहां फिर आया मंदिर में का। तो मंदिर का जो पुजारी था वो साथ साथ था, 2-4 ऑफिसर और भी आ गए, ऊपर नीचे सब देख के सब कहते हैं कैसा हाल किया। ऐसी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ये टूटे टूटी चीजें हैं, कहना सरकार पैसा नहीं है। और ये काम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के अंदर जो आसार कदीमा होते हैं वो मिनिस्ट्री के हाथ में होते हैं। बस मौला चले गए। जब चले गए कराची पहुंच गए, मौला ने अनाउंस किया कि मैं द्वारका के मंदिर की रिपेयर के लिए 50,000 रुपए लेता हूं। वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बहुत खुश हुई और 50,000 रुपए मौला मेरी और उसको रिपेयर किया। एक मंदिर की हालत खराब देख के इमाम ने उसको भी रिपेयर किया। ये हमारे इमाम का दर्जा है। उस वक्त इमाम कहने लगे कि एक जमाने में कृष्ण इधर बहुत खेला करते थे। ए मोमिनो, मैंने ये बातें आपको अपनी हिस्ट्री में से बयान की है। मेरी वाजों में वो चीजें हैं कि जो कई किताबों में लिखी हुई नहीं है। उम्र के हिसाब से मुझे जो तजुर्बा हुआ और सी चीजें सीखी कि आपके अंदर इस किताब में आ रही है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो मेरी अर्जी है इबादत करो ताकि दुख दूर हो रहे। याद रखो जैसे जैसे दुख बढ़ेंगे तैसे तैसे ज्यादा इबादत करने की जरूरत है। दुख इसलिए आते हैं कि गुनाह बढ़ गए। नबी पाक फरमाते हैं कि जब किसी मुल्क में जब किसी जमीन के खत्ते में गुनाह बढ़ जाते हैं तो जमीन रोती है। अभी जमीन का रोना क्या है? जब ये आदमी रोता है तो सिर्फ ढूंढता है, इधर उधर ढूंढता है तो जमीन हिलती है, जलजला होता है। जमीन का जलजला जमीन का रोना है। खुदा जालिम नहीं है। कई लोग जहां दो लाख आदमी मर जाते हैं उन लोग कहते हैं कि खुदा ने औरतों मर्दों को बच्चों को मासूम को उनको मार डाला, उसके पास हिसाब ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं नमाजों में जिक्र किया है, मैं अपनी जमात को जगाता रहता हूँ। ऐ मोमिनो, आने वाला जमाना बहुत अच्छा है लेकिन फिर कहता हूँ बहुत बुरा है। अच्छा इसलिए है कि बख्शिश है, नवाजिशें बहुत मिलेंगी, रहमतें मिलेंगी। बुरा इसलिए है कि गुनाह बढ़ जाएंगे तो इन रहमतों का जितना फायदा होना चाहिए नहीं होगा। इसलिए आज एक भी आदमी को जमात खाना बंद नहीं करना चाहिए। एक भी आदमी इस जमात खाने के अंदर, यानी मैं खाली मैं जमातों को कहा करता हूँ आपको क्या चाहिए? दौलत जमात खाने में मिलेगी, औलाद चाहिए जमात खाने में मिलेगी, इज्जत चाहिए जमात खाने में मिलेगी, रोजगार में बरकत चाहिए जमात खाने में मिलेगी, सेहत और तंदुरुस्ती चाहिए जमात खाने में मिलेगी। क्या चीज चाहिए आपको? इधर आओ। मगर ये याद रखो हर चीज की एक कीमत होती है। छोटी मोटी बीमारी होगी, दो चार तस्वीरों निकालोगे, आठ दस पंद्रह दिन बीमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि उस बीमारी के पीछे गुनाह कम है। लेकिन बहुत बड़े गुनाह की सजा अगर बीमारी आ गई तो महीने दो महीने की इबादत काफी नहीं। अगर जो आप हर रोज जमात खाने में आते रहो और एक ही चीज के पीछे लगे रहो तो कभी न कभी जरूर मिलेगी। मैंने अपनी जिंदगी की बातें वालों में नहीं कही, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन इस वक्त मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको एक बात कहूं। मैं 19-20 वर्ष की उम्र से वादे करता था और इमाम के हुक्म से रिश्ते बना मुझे मेडिकल डॉक्टर बनना था, पहले मौला ने कहा मेरा मिशनरी बन, मिशनरी बना और बयाया डिनर पढ़ने शुरू किया। 20-21 वर्ष की उम्र में मेरे दिल में एक तमन्ना हुई, यह बोला मुझे ये चीज चाहिए, रूहानी चीज एडिंग कर। मैं हर रोज ड्रा मान करा, एक दिन भी नाफा नहीं किया। एक बरस गुजर गया, दो बरस गुजर गया, तीन बरस गुजर गया, चार बरस गुजर गया, 9 बरस के बाद वो मुझे मिली। लेकिन इन 9 वर्षों में एक भी दिन मेरे दिल में ये नहीं आया कि चलो छोड़ दो, नहीं है। मैंने एक दिन भी नाफा नहीं किया। और एक असीम चीज थी जो बोला जाती है, मैं कहता हूं आप, मुझे रसूलुल्लाह का दीदार चाहिए। बहुत शुक्र, लेकिन मैंने एक दिन छोड़ा। आपको कहता हूं जो चाहू जमा खाने में रहता, लेकिन बेसब्रे मत बनो, बेसब्रे मत बनो कि मैं 4 तस्वीरें ले आलू मेरा काम हो गया। ये आपके रूहानी हालत क्या है उसके ऊपर आपकी दुआ कबूल होती है। आपकी रूहानी हालत क्या है, आपका ईमान कितना है, आपके दिल में मोहब्बत कितनी है, वो मौला बेहतर जानता है, सब कुछ जानता है। एक चीज ये भी हो सकती है कि आप जो मांग रहे हो वो आपके लिए अच्छी नहीं, इसके लिए शायद न दे रहे। मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मांगना शुरू करो तो मौला को जरूर अर्ज करना, या मौला मैं ये चीज मांग रहा हूं, अगर मेरे लिए अच्छी नहीं तो मुझे इस लाइक बना के भी चीज दी है। फिर भी मांगते रहो, अरे 10 बरस निकल जाए, मगर एक चीज याद रखो, ऐसा मत कहना इधर लॉटरी निकलती है। हमारे यहां लॉटरी निकलती है 649 $10 मिलियन, और कई लोग उसके लिए तस्वीर निकालते हैं। ये चीज को रूहानी चीज मानो, या ऐसी चीज मानो कि जो जिंदगी के लिए जरूरी है, सेहत तंदुरुस्ती मांगो, रोजी रिजल्ट की बरकत मांगो, अपने घर के अंदर सुकून और सलामती रहे वो मांगो, इज्जत आबरूज कर रहो ये मांगो, लेकिन मान दौलत मत मांगो। अगर हम रोटी खा के पेट भर के रह सकते हैं, खुदा ने इतना दिया है, रहने के लिए घर दिया है, एक छोटी सी मोटर या मोटरसाइकिल भी है, और थोड़े से पैसे बचे रहते हैं कि आगे चलना तो नहीं, लेकिन जब हम ये मानते हैं कि मैं खूब माल डॉलर पैदा करूं, मालदार बन जाऊं, बड़ी गाड़ी लूं, बड़े मकान ले जाऊं, तो ये जो लालच है इंसान को खराब करता है। ये कहते हैं कि लोग, लोग का मतलब है हिरस, लालच, मन मोह सौदा कहता है। लोग लालच मन मोह लगत है से दिन की राह से वो दिन की राह से उठ गया, क्योंकि माफ करना, दिन की राह से उठ गया क्योंकि लोग और लालच उसके ईमान को खराब करते हैं। लोग जमाना खराब है, मेरी आजिजी आपके सामने ये है, चमक खाने रोज आओ, बन सके सुबह भी आओ, कामकाज की वजह से सुबह शाम नहीं आ सकते तो या रात को आओ या दिन को आओ, मगर चमक खाने हर रोज और सारा दिन एक तस्ती या अल्लाह की निकालो, एक तस्ती या अली की निकालो, एक तस्ती या मोहम्मद की निकालो। और हज़रत इमाम कहते हैं किसी भी इमाम का नाम लेके तस्बीह निकाला करो, क्योंकि हर इमाम में अल्लाह का नूर मौजूद है। ज्यादा नेकियां करो, खैरात करो, एक दूसरे की मदद करो, कोई तकलीफ में है उसके पास जाओ, उसकी मदद करो, कोई भी कोई राह पूछ रहा है तो उसकी रहनुमाई करो। कहने का मकसद यह है कि बचने के लिए इबादत ज्यादा करो, ये जमाना खराब है इसलिए ज्यादा इबादत करो, आपके घरों में आबादी और सुकून रहेगा, आपके दिलों में इत्मीनान रहेगा, आपके दिमागों के अंदर एक किस्म की खुशी और सुकून रहेगा, सुखी आबाद बोला ध्यान रखे मैं थोड़ी ईमान की सलामत, हकीकत की समझ, दस मन में कूड़ा करे, शुक्री की मना दे मौला आप नियामत दे रहे, अपनी बख्शीशें दे रहे, हमेशा अपनी रहमत में रखे, अल्लाह आफत दूर करे, बीमारियां दूर करे, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दे, आल औलाद में बख्शत दे, रोजी रिज़्क में बख्शत दे, घरों में आपस में जमातों में आपस में मोहब्बत दे रहे, मौलाना हज़रत इमाम आपको तौफीक दे रहे कि ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, इंशाअल्लाह दिन ब दिन आपको मौला ऊंचा उठाएगा, तरक्की होगी, सुकून होगा, सुकून के साथ खुशी होगी, इत्मीनान होगा, सुखी होगा।
Allahumma hadhihi ma'a jilalika wa hadhihi ma'a fikramatika